देवी माता बहनों और भाइयों, हम सब लोग मानव जीवन की उच्चतम उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं। सबसे ऊंचा जीवन का चित्र कैसा है कि जिसमें शांति, स्वाधीनता और परम प्रेम भरपूर हो, अर्थात जो व्यक्तित्व शांति, स्वाधीनता और परम प्रेम के रत्न से अभिन्न हो जाए, यह है हमारे जीवन का उच्चतम चित्र है। वर्तमान की दशा क्या है? वर्तमान की दशा ऐसी है कि निज विवेक के प्रकाश में हमने प्रतीत होने वाले जगत की परिवर्तनशीलता को देखा है। इसके नश्वर स्वरूप को हम लोग पहचानते हैं। अतः इस आधार पर प्रतीत होने वाले जगत की ओर से सहारा टूट जाता है। कैसा भी व्यक्ति हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, उच्च वर्ग में जन्मा हो, निम्न वर्ग में जन्मा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य को जन्मजात विवेक का प्रकाश मिला है जिसमें वह बनने, बदलने, बिगड़ने और मिलने वाले संसार के चित्रों को अच्छी तरह से देख सकता है और समझ सकता है। तो इधर निश्चिंत होने लायक कोई बात मिलती नहीं है। मनुष्य के भीतर बड़ी भारी आवश्यकता इस बात की है कि वह शांतिपूर्वक रह सके, सब प्रकार की पराधीनताओं से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके और परम प्रेम के रस से भरपूर हो सके, यह उसकी मांग है। तो शांति, स्वाधीनता और परम प्रेम की सरलता आज इस वर्तमान में हम भाई बहनों के जीवन में मांग के रूप में विद्यमान है। एक ओर बनने, बदलने, बिगड़ने वाला जगत है जिसकी प्रतीति हो रही है, दूसरी ओर कभी न बिगड़ने वाला, सदा सदा तक रहने वाला, कभी अप्रिय नहीं बनने वाला, ऐसे जीवन की मांग है। इन दोनों के भीतर से होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के विधान से और संतजनों के अनुभव से, सतग्रंथों के वाक्यों से हम लोगों को एक बड़ी अच्छी बात मालूम है। वह क्या है कि जो सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, प्रतीति हो रही है परंतु प्राप्ति नहीं होती है, उसकी आसक्ति हम छोड़ सकते हैं, उसकी पराधीनता हम तोड़ सकते हैं, उसके तादात्म्य से ऊपर उठ सकते हैं, इसकी संभावना बताई गई बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या सुनने को मिली कि जो देखने में नहीं आता, जो इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, जो बुद्धि की सीमा में नहीं समा सकता, ऐसा है और वही नित्य तत्व है, वही अनादि अनंत है, वही आनंद स्वरूप है, वही प्रेम स्वरूप है, उसी की हम लोगों को मांग है, और उसकी मांग पूरी हो सकती है। तो जिससे संबंध जोड़कर अनेक प्रकार के दुख हमने उत्पन्न किए, उसके संबंध को तोड़कर दुखों से मुक्त हम हो सकते हैं, इस संभावना को संतजनों ने प्रकट सुनाया, लिखने वालों ने प्रकट किया। हम निपटते हैं, सुनते हैं, आवश्यकता हो सकते हैं तो नहीं को नहीं कहकर स्वीकार करने की सामर्थ्य जीवनदाता ने हम भाई बहनों को दिया है। को है कहकर स्वीकार करने की योग्यता, स्वीकार करने की सामर्थ्य जीवनदाता ने हम लोगों को दिया है। आप इसको मानेंगे कि नहीं? जिसमें नाश दिखाई देता है, जिसमें स्थिरता नहीं है, उससे संबंध रखना अपने को पसंद है? तोड़ना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। और तोड़ने की सामर्थ्य जीवनदाता ने, जन्मदाता ने दिया है हम लोगों को, इसीलिए यह दायित्व अपने पर आया। और जो सदा खुदा से है, अलग अगोचर है, अनादि अनंत है, मानव प्रवर्तन की भाषा में जीवन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, स्वतंत्र सत्ता और किसी की है नहीं। उसके संबंध में हम सोचते ही रहे, चिंतन ही करते रहे, कल्पना ही करते रहे, उसकी प्रतीक बना करके उसका पूजन ही करते रहे, ऐसा नहीं है कि सोचते ही रहोगे, कि प्रतीक को निमाते रहोगे, कि सिंबल पर ही आधारित रहोगे, कि कल्पना ही करते रहोगे, ऐसी बात नहीं। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। आज के युग में कुछ कच्चे वैज्ञानिक हैं, सो कॉल्ड वैज्ञानिक कहना चाहेंगे, वो सच्चे हैं नहीं, लेकिन उनको भ्रम हो गया है कि बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े तार्किक हैं, तो वे कह देते हैं कि भाई मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो ये बात तो संदेहास्पद है, क्या जाने किसने बनाया मालूम नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया, ऐसा भ्रम है उनको। गॉड क्रिएटेड मैन, ये तो सुनी हुई बात संदेहास्पद है, परंतु मैन क्रिएटेड गॉड, ये बात पक्की है। वैसे भाई तो भगवान है कि नहीं है, कहाँ है, कौन जाने। आदमी ने कहीं दो हाथ बना के खड़ा कर दिए, कहीं चार हाथ बना के खड़ा कर दिए, कहीं अस्त गुजर बना के खड़ा कर दिए, तो ये तो आदमी की ही रचना है कि उसने अपने मन से अपनी मर्जी के अनुसार जगह जगह विभिन्न रूप में भगवान बनाकर खड़ा कर दिए। ऐसे ऐसा भ्रम भी हो जाता है लोगों को, उनकी बात छोड़ दीजिए, हम लोग अपनी चर्चा करें, अपने को सामने रखकर सोचें, तो आप देखेंगे कि दिखाई देने वाले जगत में भ्रमवश सद्बुद्धि रखने के कारण इसकी ओर बड़ी घनी आसक्ति मैंने अपने में उपजा लिया। और यह दिखाई देने वाला जगत जो है, इसकी वस्तुएं और इसके व्यक्ति जो हैं, वो किसी भी प्रकार से मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं सकते, हुआ ही नहीं आज तक। इस दृष्टि से इधर से निराशा होती है, इधर का सहारा टूटता है, और बेसहारे रहने का साहस अपने में है नहीं, जीवन में तो अपूर्णता अनुभव अनुभव करता है, अभाव अनुभव करता है, शरीर और परिस्थितियों की पराधीनता में बंधा हुआ अनुभव करता है, वह अकेला रह नहीं सकता, बेसहारे रह नहीं सकता, उसको एक अचल सहारा चाहिए। ऐसा सहारा उसको चाहिए कि जिसको पकड़कर वह सदा सदा के लिए निश्चिंत हो सके। ऐसी जरूरत मनुष्य की है, उसकी इस आवश्यकता की पूर्ति सारी सृष्टि मिलकर नहीं कर सकती। कहीं भी जाओ, किसी से मांगो, मुझे संसार का कोई ऐसा सहारा दे दो जो कभी भी छूटे नहीं और जिसको पा करके मैं सदा के लिए निश्चिंत निर्भय हो जाऊं। ऐसा सहारा सारा संसार मिलकर के भी आपको नहीं दे सकता, है ही नहीं है। तो ऐसी हालत में घुमा फिरा करके किसी न किसी ढंग से व्यक्ति को उस अदृश्य अनजाने अलग अगोचर नित्य सत्ता पर विश्वास करना ही पड़ता है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि हमसे रहा नहीं जाता, अपने में अधूरापन अनुभव होता ही है। और संत जनों ने, सदग्रंथों ने बताया कि सर्व प्रतीति का प्रकाशक, सर्व उत्पत्ति का आधार एक है जरूर, जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जिसके ज्ञान प्रकाश स्वरूप में सब कुछ प्रतीत हो रहा है, है अवश्य। तो हम लोगों की वो भीतर से यह मांग मालूम होती है कि हमको ऐसा चाहिए, और बाहर से संतजनों के वचनों में सुनाई देता है कि ऐसा है, और सदग्रंथों में लिखा हुआ भरा पड़ा है कि ऐसा है। इस आधार पर भाई बहनों के जीवन में ईश्वर विश्वास का एक तथ्य पाया जाता है। ठीक है, जहां संसार से काम चल गया वहां इससे काम चला लिया, जहां इधर से काम नहीं चला तो भगवान को याद कर लिया, इस दुविधा में जीवन का बहुत बड़ा भाव निकल गया। ठीक है, अब इस दशा को मिटाना है भाई, दुविधा में क्यों रहेंगे। दो स्वतंत्र सत्ताएं हो नहीं सकती, एक ही को मानेंगे हम। दिखाई देने वाले ने मुझे संतुष्टि नहीं दी, मुझे निश्चिंत नहीं किया, मुझे निर्भय नहीं किया, मेरे अभावों को दूर नहीं किया। इसलिए जो सजग भाईजान होते हैं, जो सजग मानव होते हैं, वे जीवन के विधान के आधार पर, संत महापुरुषों के वचन के आधार पर, सदग्रंथों के वाक्यों के आधार पर, बिना देखे बिना जाने परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकृति मात्र से हम आस्तिक हो जाते हैं। अब आगे चल करके अपने को भक्तों की श्रेणी में आना है। हमने बड़े ऊंचे ऊंचे भक्तों के जीवन को पढ़ा है, सुना है, पसंद किया है, बड़ा उत्साह बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक सहज आकर्षण उसकी ओर है, और मैं अपने आधुनिक ढंग से वैज्ञानिक भाषा में समझना चाहती हूँ। तो अपने को मैंने इस प्रकार से समझाया कि जो संपूर्ण जीवन का मूल स्रोत है, उसकी ओर मेरा आकर्षित होना सहज है, स्वाभाविक है। अब आप देखिए, संतजनों के पास हम लोग जाते हैं, जिनके व्यक्तित्व में सत्य की अभिव्यक्ति हो गई, अर्थात जिनके व्यक्तित्व में परम प्रेमास्पद प्रभु की विभूतियां प्रकट हो गई, उदारता के रूप में, स्वाधीनता के रूप में, परम प्रेम के रस के रूप में, तो उन संत महापुरुषों के प्रति हम भाई बहनों का एक सहज आकर्षण होता है। तो जो परम स्वाधीन है, जो परम उदार है, जो परम प्रेम का अथाह सागर है, उसमें अगर इतना आकर्षण है कि मेरी भूली भटकी हुई दशा में भी वो हमें अपनी ओर खींचे ही रहता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। उनके दिए हुए सद्गुणों के आधार पर आपका व्यक्तित्व समाज में बड़ा आकर्षक हो जाता है। तो जो सब सद्गुणों का उद्गम है उसमें क्या आकर्षण कम है?
कम नहीं।
तो होता क्या है कि निज विवेक का अनादर करके अपने जाने हुए असत के संग का त्याग करने में भी हमने थोड़ी देर लगाई। अच्छी बात ना हुआ है तो सही, आज तो अच्छा संयोग बना है, सुखद परिस्थिति दिखाई दे रही है, तो आज तो इसका सुख ले लो, फिर नश्वरता के बारे में कल सोच लेंगे। ऐसा करके पता नहीं कितनी अनमोल घड़ियां हम खो चुके, जिन घड़ियों में परम प्रेमास्पद प्रभु के अत्यंत आकर्षक, अत्यंत मधुर रस के प्रवाह से हम अप्लवित हो सकते थे, उन घड़ियों में भी मैंने कृष्णा भरी दृष्टि से जगत की ओर देखा, अपने को पराधीन पाया, अपने को दीन पाया। तो घाटा लगा कि लाभ हुआ? बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो ठीक है, हो गया, तो भी किया, क्या करें। जीवन दाता, जन्म दाता परम उदार है, वे हमें क्षमा भी करते हैं, और आज से छूट गया तो आज से ही आगे बढ़ने का साहस भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, जितना हम चल सकते हैं उतना हम चल लेते हैं, जहाँ मेरी सामर्थ्य खत्म हो जाती है वहाँ आ करके अपने करुणा भरे हृदय से हमें उठा कर दिल से लगा भी देते हैं। ये सब बातें वे करते हैं मनुष्यों के प्रति, साधकों के प्रति, सामर्थ्यवानों के प्रति, असमर्थों के प्रति, सब उनके प्यारे हैं, सब उनके प्यारे हैं, सबको वे अपना मानते हैं, और सभी की इस दिशा में सब प्रकार से सहायता करते ही रहते हैं। ऐसा मैंने अनुभवी संत की वाणी में सुना, और सुनने से जीवन के प्रति एक बहुत ही आशाजनक दृष्टिकोण बन गया। बहुत अच्छी बात है, सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर नहीं डाली, कुछ जिम्मेदारी आप पर है। वे कर सकते हैं सब कुछ, परंतु एक बड़ी जोरदार बात है कि आप आवश्यकता अनुभव करें तो नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा ही मैंने प्रश्न किया था महाराज जी से। स्वामी महाराज प्रारंभ में ही मुझे बता दिया जाता कि यह सब असत का संग है, तो क्यों इनके संग में निपट करके अपनी दुर्दशा करती मैं, क्यों हमें बुराई में प्रवेश करने की अभिरुचि उत्पन्न होती है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, पशु पक्षी आदि योनियों में जो शरीरधारी हैं उनमें स्वाधीनता कम है, वे केवल प्रकृति के विधान से बंधे हुए चलते हैं, देह जनित सुख दुख का भोग करते हैं, और मरते हैं, तो जन्म लेना, देह जनित सुख दुख का भोग करना और मर जाना, इसके अतिरिक्त उनके भीतर और कोई जिज्ञासा नहीं है और कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु मनुष्य एक ऐसा विलक्षण शरीरधारी है कि इसमें संसार का आकर्षण है, तो संसार से परे जो है, अनादि अनंत जो है, उसके प्रति जिज्ञासा भी है, उसके परम प्रेम की प्यास भी है। तो वो शरीर से अतीत जो कुछ है उसके बारे में सोच सकता है, उसके लिए पुरुषार्थ कर सकता है। इतनी स्वाधीनता मनुष्य को दी गई है। अगर परमात्मा ने नियम बना के बांध दिया होता, परमात्मा न कहे तो सृष्टि का मूल तत्व कहे, नित्य तत्व कहे, जो भाषा आपको अच्छी लगे, जिसने हम सब लोगों को बनाया, तो उसने अगर नियम बना के बांध दिया होता कि वाणी की शक्ति तो तुम्हें मिली है लेकिन तुम मिथ्या बोल ही नहीं सकते हो, तो इस तरह से अगर प्रकृति के विधान में उन्होंने बांध के हम लोगों को पराधीन बना दिया होता तो अपनी स्वतंत्र सत्ता का भास ही नहीं होता, तो नित्य जीवन की खोज ही आरंभ नहीं होती और परम प्रेमास्पद प्रभु को रस प्रदान करने की जो गरिमा है, महिमा है मनुष्य जीवन की, वो भी कभी चर्चा नहीं होती। इसलिए उन्होंने स्वाधीनता दी और स्वाधीनता दी तो उसके कारण से एक जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई कि तुम संसार के साथ रह करके उसके अनुभवों को जान चुके, तो अब ये तुम्हारी अपनी स्वाधीनता है कि तुम उसी में फंसे रहना पसंद करते हो कि उसके बंधन से मुक्त होना पसंद करते हो। तो पसंदगी की बात तुम्हें सोचनी पड़ेगी, अपनी पसंदगी को बदलना पड़ेगा, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। और हम उसी को पसंद करेंगे, इसको नहीं पसंद करेंगे, इतनी बहादुरी अपनी ओर से करनी पड़ेगी और बाकी जो कुछ चाहिए उनके मंगलमय विधान से सभी प्रकार के साधनों को स्वतः मिलता ही रहता है। तो मनुष्य की ये महिमा है कि वो दिखाई देने वाले सुहावने लुभावने संसार को इनकार कर देता है, कर देता है नहीं 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 ये मुझे नहीं चाहिए। और मनुष्य की ही यह महिमा है, उसी की ही हृदयशीलता है, उसी का ही यह प्रेम भाव है कि वो बिना देखे बिना जाने परमात्मा पर बिना किसी शर्त के अपने को समर्पित कर देता है। किस लिए? उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको रस प्रदान करने के लिए। और समय समय पर हम लोग सुना करते थे स्वामी जी महाराज कभी कभी अपनी मौज में आ जाए मस्ती में तो खूब जान पर ऐसे हाथ से ताली बजाते छोड़ते और कहते जाओ यार तुम भी क्या कहोगे, तुम भी आजाद रहो मैं भी आजाद हूं। तो अर्थ क्या निकला कि मनुष्य में प्रभु के प्रति प्रेम के भाव का जो प्रगुण भाव होता है उस रस की वृद्धि होती है और उसका लक्ष्य होता है कि जिसने मुझे कर्म सामग्री दी संसार की सेवा के लिए, जिसने मुझे विवेक का प्रकाश दिया जन्म मरण का बंधन काटने के लिए, जिसने मुझे प्रेम का भाव दिया रस से भरपूर रहने के लिए, यह प्रेम भरा जीवन मैं उस पर निर्भर करता हूँ, यह प्रेम भरा जीवन मैं उसके समर्पित करता हूँ उसकी प्रसन्नता के लिए। तो इतना ऊंचा हो सकता है मानव का जीवन जो सेवा करके संसार के लिए उपयोगी हो जाए, निष्काम होकर स्वयं अपने अचार होकर स्वाधीन हो जाए, और प्रेमी होकर प्रभु को रस प्रदान करने वाला हो जाए। इतना ऊंचा उन्होंने स्वयं अपने ही से बनाया है, ये उनकी ही योजना है। अपने जीवन की महिमा को हमने स्वयं स्वीकार नहीं किया और उनकी उपस्थिति में हमने आस्था नहीं की, उनके दिए हुए प्रेम भाव को आसक्ति से मैंने दूषित कर दिया, तो उसके अभाव में जीवन में नीरसता भर गई, दुख भर गया, बहुत बुरा हाल हो गया। अब आज हम सब लोग उस दुर्गति को मिटाकर जीवन के उच्चतम महत्व को पूरा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। तो अब साधन के स्तर पर आइए, क्या करें हम। पिछले कई दिनों से अप्रयत्न होने की बात चल रही है, सारा प्रयत्न और सारा श्रम कब सार्थक होता है, जब हम प्राप्त सामर्थ्य को जगत की सेवा में लगा देते हैं। तो जितनी सामर्थ्य मिली और जितनी जिंदगी मिली और जो कुछ सामग्री मिली, यह तो सब सेवा में लगा दिया गया, सबका सदुपयोग हो गया। अपनी मांग कैसे पूरी हो, तो सब सामग्री से, सब परिश्रम से अपने को थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग रखना है, उसका साथ छोड़ना है, उससे असंग होना है, उसका तादात्म तोड़ना है। ये पुरुषार्थ किस लिए? अपने लिए। तो जगत का जो अंश अपने पास है वो जगत की सेवा के लिए है, उसमें से कोई हिस्सा अपने काम नहीं आएगा। और सबसे असंग हो जाना यह है अपने लिए उपयोगी है। इसमें ईश्वर विश्वास की दृष्टि से समर्पण योग की चर्चा चल रही थी, जिसके संबंध में काफी बातचीत हो चुकी। अब थोड़ा सा अंश रह गया अहम शून्य होने की बात, अप्रयत्न होने की बात। वो ऐसी है कि आप देखिए, स्थूल कर्म के स्तर पर अथवा सूक्ष्म चिंतन के स्तर पर कुछ भी करते रहने की दशा में शरीरों से संबंध हम तोड़ नहीं सकते, करने का संकल्प शेष ही रहा तो अप्रयत्न होते कैसे बनेगा, और करने का संकल्प रहेगा तो अहंकृति और उसमें से स्फुरित होने वाली प्रवृत्ति, सूक्ष्म की सूक्ष्म प्रवृत्ति खत्म ही नहीं होगी। बहुत ही आवश्यक बात है कि आप चाहते हैं अविनाशी जीवन, और जितने कारक अंग हैं हमारे स्थूल अथवा सूक्ष्म में, वे हैं नाशवान। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को, तीनों शरीरों का समूह ले लीजिए तो शरीरों की रचना नाशवान तत्व से हुई है कि अविनाशी? नाशवान भौतिक तत्व है ना। तो इन तीनों शरीरों से तादात्म्य तोड़ने का प्रश्न हम लोगों के सामने है, तब देहातीत जीवन का अनुभव हो, उसमें कितना सातत्य है, उसमें कितनी स्वाधीनता है, इस बात का पता तो तब चले जबकि सीमित नाशवान से तादात्म्य मेरा टूटे। अभी तक शरीरों के माध्यम से भौतिक जगत का संपर्क स्थापित करके सुख लेना मैंने पसंद किया था, तो शरीरों के साथ मेरा ऐसा तादात्म्य जुट गया कि अपने को कभी पता ही नहीं चला कि शरीरों के अतिरिक्त मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है, पता ही नहीं चला। सत्संग के प्रकाश में, संतजनों के संपर्क में बैठकर हम लोगों को इस बात का पता चला कि मेरा तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, हम तो उस अनादि अनंत के धातु से रचे गए हैं, हमारे जीवन में पूर्णता तो उससे अभिन्न होकर ही आएगी, इस बात का पता चल गया। तो अब इस प्रोग्राम को पूरा करने में हम लोगों को लगना है, तो क्या करना चाहिए? प्रवृत्ति और निवृत्ति को समान रूप से महत्व देना चाहिए। और ईश्वर विश्वास की दृष्टि से मैं चर्चा कर रही थी कि काम करते समय भी बिल्कुल सच्ची बात है, अनुभूत सत्य है कि आपको जीवन का सत्य याद है तो बड़ा आनंद आएगा। कार्य क्षेत्र में रहते हुए, शरीर से काम करते हुए अगर ये भाव आपके भीतर जागृत है कि मेरे प्रभु की दी हुई परिस्थिति, उनकी दी हुई सामग्री, उनकी बनाई हुई सृष्टि, तो सामर्थ्य और सामग्री का सदुपयोग सृष्टि की सेवा में हम कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो उनकी प्यारी प्यारी सृष्टि की सेवा के द्वारा हम अपने को प्यारे की प्रसन्नता का पात्र बना रहे हैं। और आगे चल करके एक क्षण के लिए तो ऐसा भी भाव जग जाता है कि क्या जाने मेरे सामने विविध रूप जो दिखाई दे रहे हैं, इन विविध रूपों में हमारा बहुरूपिया ही खड़ा हो तो क्या पता, उसको एक से अनेक होने में देर लगती है क्या?
नहीं लगती है।
एक से अनेक होने में उसे देर नहीं लगती। और अब तो मैं संत कृपा से, भगवत कृपा से बड़ी दृढ़ता के साथ करती हूँ कि सत्य है तो वो ही है, और बाकी जो कुछ हम लोगों की आंखों के सामने हो रहा है तो क्या है, तो समझ जाने क्या करें। तो ऐसा होता है, उससे अपने को अभिन्न होना है। तो कार्य काल में भी वह सत्य और उसके प्रति आपके भीतर का भाव याद आ गया तो वहीं पर जहां से तहां उस सत्य की अभिव्यक्ति से आप आनंद में ऐसे विभोर हो जाते हैं कि क्रिया भी छूट जाती है, कार्य भी छूट जाता है, कार्य के क्षेत्र का दर्शन भी लुप्त हो जाता है, और एक एक आनंद, एक रस, एक रोम रोम में प्रसन्नता भर के और आपकी सारी शक्तियों की, सर्वेंद्रियों की शक्तियां उस आनंद में विलीन हो करके अलौकिक जीवन का अनुभव करा देती हैं। तो कल भी निवेदन किया था मैंने, ये साधन काल की चर्चा है, ये स्थिति जीवन की चर्चा नहीं है। साधन काल में भी ऐसा होता है, अब बार 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 चित्र बदलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में प्रतीत होने वाले जगत की प्रधानता अपने पर आ जाती है। तो जो साधक जन है वो जगत की प्रधानता आने पर केवल सेवा के लिए आंखें खोलते हैं, केवल पुराने राग को मिटाने के लिए प्रवृत्ति में हाथ डालते हैं, और उसका बड़ा शुभ परिणाम यह होता है कि कार्य की अवधि समाप्त होते ही ज्ञान समूह के साधकों को निज स्वरूप की याद आई, बड़ी जोर से प्रेम पंथ के साधकों को अपने प्यारे प्रभु की याद आएगी बड़े जोर से, और जब एकांत हो जाओ, कार्य क्षेत्र से हट जाओ, अकेले बंद हो जाओ, आश्रम में बैठना है जिस परिस्थिति में है, मामूली मकान है तो विशेष है तो टूटा है तो झोपड़ी है तो पान है तो जो भी कुछ है, थोड़ी देर के लिए अपने को प्रवृत्ति से अलग करके शांत रहने का अवसर दीजिए। आपकी भावना के अनुसार जैसे ही आप शरण्य की शरण में अपने को डालकर अहम प्रीति शून्य हुए नहीं कि विविध प्रकार की अलौकिक अनुभूतियों से जीवन भर जाए। पुराने सब संस्कार मिटने गए, किए कराए का फल जो आनंद में अंकित हो गया है वो रह गया है, तो कृपा शक्ति उसको मिटाएगी। हमारे प्रयास से हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन कृपा शक्ति का आश्रय लेने पर सफलता मिल जाए। एक बार आश्रित तो होकर देखिए तो सही, ऐसे भी वीर पुरुष संसार में आए जिन्होंने ज्ञान के प्रकाश में एक साथ ही सब असत के संबंध का त्याग कर दिया, तो उनमें अविनाशी जीवन के प्रति जितना जोरदार उत्साह था उसके प्रति पूरी जीवनी शक्ति उनकी जिस ऐसे संबंधित हो गई कि उन पर शरीरों के स्तर पर बने हुए विकारों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। एक बार इनकार किया तो सदा के लिए हो गया। मैं अपने जैसे साधकों के लिए कहती हूँ कि जिनके भीतर अविनाशी जीवन की मांग भी है और समाज में भले आदमी कहलाने का सुख भी है, होता है, ये है मेरी दुर्बलता, अनंत जीवन का रस इतना गहन होता है, इतना घना होता है कि उसमें तो सब कुछ डूब ही जाए, उसकी बराबरी की दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। संत कबीर की वाणी मुझे याद आती है, एक जगह पर उन्होंने कहा है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरज निरत स्थिर हो, कहें कबीर वा क्षण को कल्प न पावे क्रोध। सब प्रकार की गतिशीलता से मुक्त होते ही अपने जीवन के मौलिक शांति तत्वों में स्थित होते ही कैसा अलौकिक अनुभव होता है, तो कबीर जी कहते हैं कि उस एक क्षण के अनुभव की बराबरी संसार के कल्पों का समय नहीं कर सकता, ऐसा होता है। तो अनुभवी संतों ने सांकेतिक भाषा में अपने अनुभवों को बताया है, हम लोगों के लिए उसका उपयोग क्या है, हम लोगों के लिए उसका बड़ा अच्छा उपयोग है कि आपके भीतर आज जो एक चेतना जगी है, एक जिज्ञासा जगी है, एक अभिलाषा उठी है कि भाई अब तो हम जन्म मरण के फेर में पड़े नहीं रहेंगे, यही अभिलाषा हम भाई बहनों के भीतर है, उसी अभिलाषा से प्रेरित होकर हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं, तो आपकी अभिलाषा को सजीव बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए और धनी बनाने के लिए मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि पूरी आशा के साथ पूरी दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़े। आपके साधन काल में ही जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो वास्तविक जीवन है, उसकी विभूतियाँ साधन काल में ही प्रकट हो जाएंगी, जरूर हो जाएंगी। और थोड़ी थोड़ी सी भी झलक मिल गई उस जीवन की कि जिसमें शरीरों का कोई सहारा नहीं है, बाहर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, ऐसे जीवन की एक एक क्षण के लिए भी अगर आपको झलक मिल जाए तो सदा के लिए संदेह खत्म हो जाएगा कि नहीं।
हो जाएगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसके बाद सारी सृष्टि मिलकर कहे कि नहीं नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला तुम्हारे लिए, कैसे होगा? तो हम डरते नहीं हैं। दया आती है उन सहने वाले पर। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनकी मदद कर दो, इनका संदेह मिटा दो। देखो ये अभी भी डूब रहे हैं। अपनी अपनी निष्ठा में कमी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी जानी हुई बात हो गई, संदेह रह ही नहीं सकता। अब इस प्रकार का विधान, इस प्रकार की योजना, ऐसा संयोग वे परम कृपालु, वे करुणा सागर स्वयं अपनी ओर से ही कर देते हैं। ये मेरी बहादुरी नहीं, मेरी उनकी कृपा का प्रसाद ही है। तो उनकी कृपा मान लीजिए, उनकी योजना मान लीजिए। हम लोगों के उद्धार के लिए उधर जितनी तत्परता है, मैं सच कहती हूँ, उतनी तत्परता हमारे में नहीं है। अपनी दुर्दशा से मुझे जितना दुख है, उससे सहस्र गुना, असंख्य गुना अधिक करुणा उस करुणा सागर में उमड़ गई है। हाय मेरा बच्चा, परम प्रेम का अधिकारी, अविनाशी जीवन का अधिकारी कहाँ भटक रहा है? तो उनमें बहुत करुणा है और हमारे सुधार के लिए उधर बहुत तत्परता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, बस केवल मेरी मेरी जो रचना है उसमें मुझमें अपने में एक एक अपने एक विश्व का एक भाग है, मैं हूँ। तो इसकी स्वाधीनता को, इसके स्वाधीन भाग को सुरक्षित रखने के लिए उन करुणा सागर ने हम लोगों को इतना सा दायित्व दिया कि भाई तुम वास्तविकता की आवश्यकता अनुभव करो, उसकी आवश्यकता अनुभव तुम करो और पूर्ति का सारा प्रबंध जीवन के मंगल में ध्यान से होता है, जीवन के मंगल में ध्यान से होता है। आप खूब आशा रखिए, खूब विश्वास रखिए, चारों ओर से उन्हीं की महिमा हम लोगों को संभालने में लगी हुई है। बस कमी केवल इतनी सी है कि हम आशा पूर्ण हो करके निश्चय पूर्वक कदम नहीं उठाते हैं, थोड़ा करते हैं, थोड़ा पछताते हैं, अच्छा इस बार इतना हो गया, फिर अगले साल आएंगे तब और थोड़ा सीखेंगे। अरे भाई अगले साल आने का खोल के जा रहे हो, आओ भी कोई जरूरी है? तो इतना मामला क्यों बनाओ, बीच में ही मामला उपस्थित हो गया तो सब रह जाएगा, सब काम पीछे। और किसी को सबसे आगे बहुत महत्वपूर्ण मान करके अभी आज जो कर सकते हैं उसमें आप अपने को लगाइए, सहायता मिलेगी और आप स्वयं अपने आप में